फिर दूसरी चीज इसमें पता चली कि जमीन भी फैला दी गई और कयामत के दिन अपनी चीजों को बाहर उगल देगी। सबसे पहले किस चीज को उगलेगी? मुर्दों को। कितने सालों से अपने सीने के अंदर लगा के रखे हुए मुर्दे, और उनको निकाल के बाहर कर देगी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान की दो मुख्तलिफ कैफियात बताई। एक वो है जिसका नाम है माल दाएं हाथ में होगा, खुशी खुशी आएगा, घर वालों के साथ दिखाएगा उनको, अल्लाह ताला उसका आसान हिसाब लेंगे। इसके बरक्स दूसरा वो है जिसका नाम है माल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा। पीठ के पीछे से क्यों दिया जाएगा? कहते हैं कि जब उसको बाएं हाथ में देने की कोशिश की जाएगी लो, तो कहेगा मैंने नहीं लेना, हाथ पीछे करेगा, तो उड़ता हुआ उसका नाम है माल उसके हाथ के पीछे जाके दे दिया जाएगा। अब देखिए कि कितने मरहले आने वाले हैं ना, और इंसान अपने आप को कैसे महफूज समझे, इत्मीनान कैसे। नबी सल्लम की बेचैनियां देखें और आपके बाद वालों की बेचैनियां देखें तो हमें अपने ऊपर हैरत होती है, रोना आता है। एक यंग लड़का 17 या 18 साल का बच्चा था, बहुत ही खूबसूरत उसका रूप उसने बताया हुआ, कहने लगा वो निकाब में था, उसने चेहरे पे निकाब डाली हुई थी। कहने लगा कि इसको पुकारा अब चचा, कह के क्या हुआ, पहले मेरे साथ वादा करें कि जो बात मैं कहूंगा मानेंगे। पूरी बातें करके सुन के कहा क्या बात है बोलो। कहा कि मैं आपके साथ जिहाद पे जाना चाहता हूँ, तो आप मेरी शक्ल देख के या मुझे देख के मना नहीं करेंगे? उन्होंने कहा क्यों? खैर जब उसको देखा पता चला कि बहुत ही छोटी उम्र का लड़का है, तो कहने लगा नहीं जो मर्जी हो आपने मुझे जिहाद पे जरूर लेके जाना है। उसने कहा कि चलो ठीक है तुम चलो मेरे साथ। उसके बाद वो फिर उस बच्चे की कहानी थी और किस तरह से वो बच्चा जाके बेदर्दी से लड़ा और गया कि वहां जब रात को पड़ाव डाला तो उन्होंने कहा कि यानी खाना मैं पकाता हूँ, हर चीज में कहता था मैं खिदमत करूंगा आपकी। वो कहते थे नहीं तुम बैठो हम करते, कहते नहीं मैं तुम्हारा खादिम हूँ। खाना पकाने गया, कई दो कितनी देर गुजरी आया ही नहीं, जाके देखा तो सो चुका था। ये उसको देखते रहे बड़े प्यार से, तो कहते हैं कि एकदम देखा इन्होंने तो वो ख्वाब मुस्कुरा रहा है ना, जैसे उसके चेहरे पे स्माइल है, तो उतनी देर में उसकी आंख खुल गई और इनको देख के शर्मिंदा हुआ कि मैं तो खाना पकाने आया था। तो खैर कहने लगा कि मैंने ख्वाब देखा है। तो उसने कहा तुमने ख्वाब क्या देखा है? तो पहले तो इसने ना बताया, लेकिन जब मजबूर किया तो उसने बताया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं जन्नत में हूँ और एक बहुत बड़ा महल दिखाया गया मुझे। जब मैं वहां गया हूँ तो बाहर कुछ औरतें जैसे वहां बैठी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि ये महल इनका है। तो नहीं, कहने लगे कि वो दो औरतें तो आपस में बातें कर रही हैं, मुझे देख के मुझे कहती हैं, एक लड़की दूसरे को कहती है ये देखो ये मर्दिया का खावंद है, ये देखो ये मर्दिया का शौहर है। तो कहने लगा, मैंने उनकी बातें सुन के पूछा कि मर्दिया कौन है? तो कहने लगी कि तुमने बाकी उसको देखना है तो महल में चले जाओ, वो इस महल की मालकन है और उससे तुम्हारी शादी होगी। कहते हैं मैं अंदर गया तो फिर उस औरत का बड़ा ही खूब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ खूबसूरत, कि बड़ी खूबसूरत एक लड़की थी अंदर और इसको देख के इसके पास आती है और फिर उसको कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन फिक्र नहीं करो कल जोहर तक तुम मुझे मिल जाओगे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वाकई वो फिर बच्चा शहीद हुआ और वो अपने आलम नज़ा में फिर सारी बातें सुनाता है कि मैं अब मर्दिया को अपनी खुली आंखों से देख रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपको पता है कि क्या हुआ, ये बच्चा उसी औरत का ही था जो अपने बालों की चोटी लेके आई थी, ये बेटा उसका था। इससे पहले उसका शौहर शहीद हो चुका था, उसका भाई शहीद हो चुका था, और बेटे को कस्में खा के उसने भेजा था कि बेटे तेरी ला तू मुझे तेरी शहादत की खबर चाहिए। मैं पढ़ा रही थी और मेरा ख्याल है कि मेरे साथ आप लोग भी रो ही रहे होंगे। यानी ऐसी कहानी, ये तो बस मैंने उसको बीच बीच में से नोच दिया। और जब फिर वो माँ ने तो सबर करना था, 9 साल की बहन थी जो वो मचल रही थी अपने भाई के लिए। मैं सोचती हूँ आज कहाँ हैं वो माएँ और कहाँ हैं वो बेटे, मुझे तो एक भी नहीं दिखता आज। वो लोग नहीं रहे, वो कहानियां नहीं रही, ये बंद किताबों में बंद करके बैठे हुए हैं, इसीलिए तो किरदार जिंदा नहीं दिखते। तो असल बात क्या है कि शऊर के साथ जीना है, जिंदगी के साथ अपनी जिंदगी में लेके कि कल जब रब के सामने जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, क्या करके आए, क्या थी जिंदगियां, हम कहाँ जिए कहाँ मरे, क्या अल्लाह ताला हमसे ना पूछेगा? क्या उसकी ये बात हमें आज समझ आ रही है जो, क्या वो बात इतने साल जिंदगी के गुजर के हमें समझ में आई, कितनी आई और कितनी नहीं आई, अल्लाह ताला हमारी आंखें खोल दे और मालूम हो जाए कि हम अपने रब के पास जाने वाले हैं। सूरत अल बरूज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद। बुर्जों वाले आसमान की कसम, वादा किए हुए दिन की कसम, हाजिर होने वाले और हाजिर किए गए की कसम, के खंदकों वाले हलाक किए गए। वो एक आग थी ईंधन वाली जबकि वो लोग इसके पास बैठे थे, और जो वो मुसलमानों के साथ कर रहे थे इसको अपने सामने देख रहे थे। ये लोग इन मुसलमानों के किसी और गुनाह का बदला नहीं ले रहे थे सिवाय इसके कि वो अल्लाह गालिब लाए के हम की जात पर ईमान लाए, जिसके लिए आसमानों जमीन का मुल्क है और अल्लाह ताला के सामने हर चीज हाजिर है। इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात। बेशक जिन लोगों ने मुसलमान मर्दों और औरतों को सताया फिर तौबा भी न की तो इनके लिए जहन्नुम का अजाब है और जलने का भी। बेशक ईमान कबूल करने वालों और नेक काम करने वालों के लिए वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यही बड़ी कामयाबी है। इन्ना बतश रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युब्दी वयुईद। यकीनन तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, वही पहली मर्तबा पैदा करता है और वही दोबारा पैदा करेगा। वो बड़ा बख्शिश करने वाला और बड़ी मोहब्बत करने वाला है, अर्श का मालिक अजमत वाला है, जो चाहे इसे कर गुजरने वाला है। हल अता का हदीस उल जुनूद। तुझे लश्करों की खबर भी मिली है, फिरऔन व समूद, फिरौन और समूद की। बलिल्लज़ीन कफरू फी तकज़ीब। कुछ नहीं बल्कि काफिर तो झुटलाने में पड़े हुए हैं और अल्लाह ताला भी इन्हें हर तरफ से घेरे हुए है। बल हुआ कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज। बल्कि ये कुरान बड़ी शान वाला है, लौहे महफूज में लिखा हुआ है। ये तरकु नंबर 10, इसका उनवान क्या है? मारे गए खंदकों वाले। असल में इस पूरे के अंदर एक वाक्या है आपके सामने रखती हूँ, बहुत ही खूबसूरत वाक्या है वो आपके सामने रखती हूँ। एक बादशाह था जो बहुत जालिम था आप कह लीजिए, और एक काफिर था, काहिन था। उस जमाने में क्या हुआ कि बादशाह ने अपने पास एक जादूगर जो काहिन था उसको रखा हुआ था, और वो ज्योतिषी और जो हालात मुस्तकबिल के बताने इस तरह के काम करता था। बूढ़ा होने लगा जब जादूगर, तो उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि ऐसा करें कि मुझे कोई जवान बच्चा ले दें, किसी कोई ऐसा डिवोट करें जिसको मैं अपना इल्म सिखा दूं ताकि मेरे बाद मरने के वो इस काम को कर सके। तो लिहाजा एक बच्चा जो बड़ा समझदार मशहूर था उसको बादशाह ने कहा कि तुम इसको जादू सिखाओ। अब वो बच्चा उसके पास जादू सीखने जाता आता, अल्लाह का करना देखे, और ये उस दौर का वक्त था जब क्रिश्चियनिटी असल दीन था उस वक्त, तो रास्ते में एक चर्च आता था। जाते आते उस लड़के के रास्ते में वो जब चर्च आने लगा तो वो वहां उठने बैठने लगा, पादरी से उसकी दोस्ती हुई, अब वो इसको दीन की तबलीग करने लगा, इसको उसकी बातें अच्छी लगने लगी। अब हुआ क्या कि पहले ये उससे जाके दीन की तालीम सीखता, फिर बाद में जाके जादू सीखता। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इसको जादू से नफरत हुई, ज्यादा वक्त इधर ही गुजारता, लेकिन बादशाह और दूसरे लोग जो थे वो यही समझने लगे कि ये जादू सीख रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि जब इसने खूब इल्म सीख लिया तो पादरी ने कहा कि देखो तुम्हारी आजमाइश होगी जरूर, क्योंकि जो भी दीन पे आता है उसकी आजमाइश जरूर होती है, लिहाजा तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा यानी अपने आप को मजबूत रखना, क्योंकि ये पूरा वाक्या है ही इस्तकामत के बाप में कि दीन के ऊपर मुश्किल हालात में डट जाने से फिर इंसान को क्या मिलता है। इत्तफाक ऐसा हुआ कि एक दिन जब ये शख्स जा रहा था तो रास्ते में देखा कि एक जानवर है रास्ते में बैठा हुआ और लोगों को रास्ता नहीं दे रहा। लोगों ने इसको कहा कि देखो अब तुम्हारे पास यानी इतना इल्म आ चुका है और तुम ये सीखते हो, तुम इसको पीछे करो। इसने कहा कि मैं उस अल्लाह का नाम लेके इसको जानवर को कहा कि देखो अगर तू भी उसी का बंदा है जिसका मैं हूं तो मैं तुझे उसके नाम से मारता हूं। इसने उसको पत्थर मारा, वो जानवर मर गया। अब जब जानवर मरा तो लोगों ने इसको बहुत ही ज्यादा अहमियत देनी शुरू कर दी कि शायद ये बहुत एक बुजुर्ग हो गया, क्योंकि अमूमन लोग दीन वालों के साथ ऐसे तसव्वुरात गढ़ लेते हैं कि यह बहुत पहुंचे हुए और इस तरह की बात है। बहरहाल एक वक्त आया कि बादशाह पे ये पोल खुल गया कि इस बच्चे ने मेरा दीन छोड़ के क्रिश्चियनिटी पे आ गया, अब उसने इसकी जान लेने की कोशिश की। लोगों को भेजा इसके साथ कि जाओ इसको जो ऊंची पहाड़ है उस पर खड़े होके वहां से धक्का दे दो। अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि जब ये वहां गए इसने एक दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इक्फिनीहिम बिमा शीता, ए अल्लाह तू मुझे ऐसे इनसे इस तरह बचा ले जैसे तू चाहता है। तो ये कहा तो एकदम पहाड़ में एक लर्जा तारी हुआ, जो इसको देखने आए थे वो गिर गए और ये बच गया। ये बच्चा तो वापस बादशाह के पास चला गया, डरा नहीं जब, क्योंकि दीन वाले नहीं डरते, सच्चा ईमान है तो डर किस बात का। कहने लगा देखो मैंने कहा था कि मेरा रब सच्चा है और देखो वो उसने मेरी मदद की। खैर बादशाह ने दोबारा कुछ लोगों को भेजा कि जाओ और इसको कश्त समंदर में फेंकाओ। कश्ती में बिठाया, वहां जब उन्होंने इसको गिराने की कोशिश की तो फिर इसने यही दुआ मांगी तो वो कश्ती डूब गई, ये बच गया। दो तीन ऐसी कोशिशें हो गई तो ये बच्चा बच रहा था। तो कहने लगा कि देखो तुम अगर मुझे मारना चाहते हो ना तो उसका तरीका मैं ही तुम्हें सिखाऊंगा, और वो क्या है कि जब तुमने मुझे मारना हो तो खुले मैदान में ले जाओ, सारे लोगों को जमा करो और वो देखे इस मंजर को, और तुम तीर मारते वक्त ये कहना बिस्मिल्लाही रब्बिल गुलाम, मैं इस बच्चे के रब के नाम पे इसको मारता हूँ। जैसे हम आज कहते हैं बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, तो फिर मैं मरूंगा वरना मैं नहीं मरूंगा। अब लोग भी मुंतजर थे कि देखते हैं किसकी बात सच्ची होती है। तो उस बादशाह ने वाकई जब इस तरह अल्लाह का नाम लेके तीर फिकवाया तो ये बच्चा मर गया। अब ये मंजर देख के वो सारे लोग जिनको बादशाह ने जमा किया था कि जरा देखते हैं इसकी इसको जरा रुस्वा होता हुआ देखेंगे, इसकी बदनामी होगी, वो सारे जो थे मुसलमान हो गए कि ये बच्चा वो मर गया और सारे लोग मुसलमान हो गए। अब बादशाह एक को मारने लगा वो इतने हो गए, ऐसे ही होता है। दुश्मन समझते हैं एक को मारेंगे तो सब खत्म होगा, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। अब फिर बादशाह ने उन बच्चों को, वो जो लोग जो मुसलमान हुए थे उनको टॉर्चर देने शुरू किए, जुल्म किए, और उसमें से फिर सबसे बड़ा जुल्म जो उसने किया वो क्या कह के खंदकें खुदवाई, यानी बड़ी बड़ी खाटियां, फिर उसमें ईंधन डाल के उनको उसके अंदर चला दिया। तो इसी से असहाबुल बुरूज है। मैं जब इन वाकियात को पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ कौन कहता है कि आज इस्लाम और मुसलमानों के लिए हालात तंग है, कभी सुना आपने? अल्लाह ना दिखाए कभी, हालात तो तंग थे शुरू में, अब तो बहुत ज्यादा समझौते हो गए। इस्लाम की कीमत पे हमेशा आजमाइशें आती हैं, लिहाजा कभी भी इसके सुन के इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं, और ऐसी बात कभी जिंदगी में आ जाए तो अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। हमारे लिए इस रुकू में से अमल की बात क्या है, हालात कैसे भी हों अपने दीन से हटना नहीं है, मौत का डर दिल में नहीं रखना, बड़े से बड़ा जालिम बादशाह भी सामने आ जाए तो अपने दीन के अंदर तब्दीली नहीं करनी। इसके बरक्स आज अगर हम अपने मुसलमानों को अपना हाल देखें तो हमारा हाल क्या होता है? बादशाह तो क्या, कोई आम इंसान भी हमारे सामने आ जाता है तो फिर हम उसके साथ भी अपने मामले को दुरुस्त नहीं करते। तो ये सूरत जो है ये हमें इस चीज का दर्स देती है कि अगर इंसान हक पे होता है तो अल्लाह ताला की मदद उस पर आती है। सूरत तारक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्समाई वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक, कसम है आसमान की और अंधेरे में रोशन होने वाले की, तुझे मालूम भी है कि वो रात को नमूदार होने वाली चीज क्या है, वो रोशन सितारा है, कोई ऐसा भी नहीं जिस पर कोई निगहबान फरिश्ता न हो। इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया गया, खोले का मिम्मा इंदाफिक, वो एक उछलते हुए पानी से पैदा किया गया जो बाप की पीठ और माँ के सीने से निकलता है, बेशक वो उसे फेर लाने पर कुदरत रखने वाला है। जिस दिन पोशीदा भेदों की जांच पड़ताल होगी तो ना होगा इसके पास कोई जोर और ना कोई मददगार। वस्समा इजात रज, बारिश वाले आसमान की कसम और फटने वाली जमीन की कसम, बेशक ये कुरान दो टोक फैसला करने वाला कलाम है, ये हंसी और बेफायदा बात नहीं, अलबत्ता काफिर दावघात में है। व अकीदु कईदा, और मैं भी एक चाल चल रहा हूँ, बस तुम काफिरों को मोहलत दे दो और इन्हें थोड़े दिन छोड़ दो। ये थरकू नंबर 11, इसका उन्वान क्या है, ए इंसान अपनी असल पहचान। इस रुकू में अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी औकात दिखाई, कहाँ से पैदा हुए हो, اور وہ سائنس کی حقیقت بتا دی جو آج کے دور میں کھلی اس دور میں نہیں کہ انسان تم دیکھو فلجنظر الانسان مما خلق, کس سے پیدا ہوئے ہو؟ خلق مما ان دافق, اچھلتے ہوئے پانی سے, کہیں اس کو ماء مہین کہا, غلیظ پانی سے, یخرج من بین الصلب والترائب, پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ صرف یہ چار لفظ یعنی تین آیتیں ہیں, اس کو لکھ کے اپنے پاس کہیں رکھ لیا جائے نا تو کبھی تکبر نہیں آئے گا, کبھی اپنے آپ کو بڑا بنانا, سنوارنا, سجانا اور اس میں اللہ کی نافرمانی کرنا, اپنے وقت کو ضائع کرنا, اپنے پیسے اور اپنے مال کو ضائع کرنا, اور پھر یہ کہنا کہ آج کوئی ہم جیسا ہو تو سامنے آئے, پول کھل جاتا ہے. پیدا کس سے ہوئے ہو؟ میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تو انسان کو مٹی اور نطفے سے پیدا کیا, کیا ہوتا اگر انسان کو سونے کا بنا دیا جاتا, چاندی کا بنا ہوتا انسان؟ میرا خیال ہے کسی سے کلام بھی نہ کرتا اس معاملے میں. سوچئے ذرا, یعنی اگر ہم سونا پہن کے ہماری اکڑ بدل جاتی ہے, ہماری چال بدل جاتی ہے اچھے کپڑے پہن کے, اور اگر ہم بنے ہی سونے کے ہوتے تو کیا ہوتے؟ اوقات پہچاننے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو جھکانے کی ضرورت ہے, عاجز بن کے جینے کی ضرورت ہے کہ اللہ مٹی سے آئے تھے, مٹی میں جانا ہے, پھر تکبر کس بات کا؟ اپنے آپ کو اس صورت کے ناطے سے عمل کی باتیں لکھیے, وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہے, پھر اپنی اصل اوقات کو ذہن میں رکھنا ہے, پھر اس چیز کا یقین رکھنا ہے کہ دوبارہ بھی پیدا کیے جائیں گے, پھر اسی طرح یعنی ایک اور چیز ہم نے اس سے سیکھی اس رکوع سے, اور وہ کیا ہے کہ جب دین کے نام پہ آپ کی مخالفت ہو تو اس وقت پھر اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں کو جو دنیا میں اس سے نعمتیں ملی اس سے بڑھا کے آخرت میں بھی عطا کرے. سورۃ آلہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح اسم ربک العلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا, اور جس نے ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی, اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی اور پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا. ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا, مگر وہ جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور چھپے ہوئے کو جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى. ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے تو آپ نصیحت کرتے رہیں, اگر نصیحت کچھ فائدہ دے ڈرنے والا تو نصیحت لے گا, ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا. کون ہے وہ؟ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. وہ بدبخت اس سے گریز کرے گا جو بڑی آگ میں جائے گا, جہاں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا, یعنی جیسے نزا کی حالت ہوتی ہے اسی حالت میں رہے گا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا. بے شک اس نے فلاح پا لی جو پاک ہو گیا, اور جس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھتا رہا. لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت تو بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی. یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں, صحف ابراہیم و موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں. یہ ہے رکوع نمبر 12, اس کا عنوان کیا ہے؟ تم نصیحت کرو. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے انداز سے اپنی تسبیح کرنے کی دعوت دی سب سے پہلے, پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ تم نہ ڈرو کہ ہم پڑھتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. آپ میں سے کسی کا یہ مسئلہ ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غم نہ کرو. کہاں لکھا ہے؟ जी सनुक्रियु का फलातंसा, जब भी इंसान इल्म के सफर किए को शुरू करता है तो शुरू शुरू में ये बहुत डर लगता है कि नहीं हम याद करते हैं हमें भूल जाता है, अल्लाह ताला ने इस सूरत में हमें बता दिया कि नहीं गम ना करो, तुम पढ़ो हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हें याद करवाना हमारा काम है। फिर इसी तरह आप देखिए कि इस रुकू में तज़किए की बात हुई, कद अफलह मन तज़क्का, और सूरत आला के बारे में कहूंगी कि सूरत आला और सूरत अल गाशिया ये दोनों सूरतें ऐसी थी कि नबी सल्लम बड़े बड़े मजमों में पढ़ा करते थे, जैसे ईद की नमाजों में, वितर की अंदर और जुमे की नमाज में। तो इनका पैगाम जो है वाकई वो एक बड़ा खास पैगाम है, और वो क्या है कि अपने रब का नाम बड़ा करना है। दूसरी चीज इससे हमें क्या मालूम हुई अपने लिए कि आखरत को दुनिया पर तरजीह देनी है। वो कैसे देते हैं दुनिया को, कैसे आखरत को कैसे तरजीह देते हैं, कोई इसकी मिसाल दें आप लोग। यानी एक तरफ दीन की दावत और एक तरफ दुनिया की दावत, हम कहाँ जाते हैं? चलें अपने आप से एक छोटी सी एक्टिविटी करवा लें, आपको एक कार्ड मिलता है और उस पर लिखा हुआ है कि फलां बहुत बड़े होटल में इस वक्त एक फंक्शन हो रहा है, आपको वहां पहुंचना है। अच्छा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि गलत काम की दावत, बहुत अच्छी दावत। और ठीक उसी वक्त के बारे में आपको एक मस्जिद में पड़ा हुआ फ्लायर भी मिल जाता है, हम कहाँ जाते हैं? ऐसे वक्तों में हम क्या सोच रहे होते हैं, ये तो बुलाते ही रहेंगे। अच्छा जी, ये कह रही हैं कि एक तरफ दीन की दावत हो और दूसरी तरफ पता चले कि उसी वक्त में हम जॉब पे जाते हैं, क्या चूज करते हैं? यानी आप किसी जॉब करने वाले को कहें कि हम मंडे से क्लास शुरू कर रहे हैं आप आएंगे, वो आगे से कह दे जी मैं जॉब करती हूँ, आपके नहीं फिर भी आइए, तो वो देखेगा कि शायद आपसे ज्यादा अहमत कोई नहीं को दुनिया में कि आप उसकी जॉब छुड़वा के लाना चाह रहे हैं। बल तू सिरून अल हयात दुनिया, अल्लाह के पास क्या लेके जाएंगे? मन जा बे कल्बिन सलीम, सलामत दिल लेके, ये तो दुनिया की चीजें दुनिया में रह जाएंगी, लेकिन इनको छोड़ना नहीं, सिर्फ अपने आप को मैनेज करना है। कभी इस्लाम नहीं कहता कि घर छोड़ दो, खाना ना पकाओ, अच्छे कपड़े ना पहनो, दावतों में ना जाओ, शादियों में ना जाओ, ये सरासर इबादत है। सिर्फ बात क्या है कि अपनी तरजीहात मुतय्यन करो। नमाज के वक्त में घर का सफाई बिल्कुल नहीं, नमाज छोड़ के अगर तुमने दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत नहीं पा ली तो ये है कि बल तू सिरून अल हयात दुनिया, उधर मस्जिदों की आवाजें हैं जमात की और तुम अपने काम पे बैठे हो, जुमे का दिन है और तुम जॉब पे बैठे हो, ये है बल तू सिरून अल हयात दुनिया। तरजीहात कुछ और हैं और चाहते कुछ और हो। फिर एक और चीज इससे जो मालूम हुई तज़किए की, कदफलहा मन तज़क्का, तस्किया किसको कहते हैं? बुरे ख्यालात को दिल से निकालना और अच्छी चीजों को लाना। अब देखिए कि बाज़ दफ़ा हम नमाजें भी पढ़ते हैं ना, और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो बहुत ही ज्यादा पढ़ रहे हैं, फर्ज भी पढ़ते हैं और नवाफिल भी पढ़ते हैं और क़यामुल लैल भी करते हैं, फिर तब्दीली क्यों नहीं आती? इसलिए कि तस्किया नहीं हो रहा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ था तज़किया को समझने का, कि जैसे एक माली है वो बीज डालता है कहीं कि यहाँ पे पौधा उगे, अब बीज भी डाल रहा है सब कुछ कर रहा है लेकिन वहां उगी हुई जड़ी बूटियों को नहीं निकालता, या वहां वो चीजें जो उसके इर्द गिर्द जो शोर है या गंदी चीजें जो उसके पौधे को फलने में मदद नहीं देंगी उसको नहीं निकालता, तो क्या पौधा उगता है? नहीं उगता ना। इसी तरह याद रखिए दिल का तज़किया कब होता है कि नेकियां भी करें और बुराइयां छोड़ें। जब अच्छी चीजें डालते जाएं बुरी निकले ना तो वो एक और ही तीसरी चीज बन जाती है। इस पे एक बात याद आ गई कि एक दफा एक कुछ लोग एक मौलवी साहब थे आलिम उनके पास आए, कहने लगे कि कुएं में कुत्ता गिर गया क्या करें, पानी तो नापाक हो गया कहाँ। हाँ उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं तुम ऐसा करो कि सारा पानी निकाल दो, यानी उसको अच्छी तरह साफ करो, दीवारें वगैरह साफ कर दोगे फिर उसके बाद जो अगला पानी जमीन से आएगा वो साफ होगा, चले गए। 2-3 दिन गुजरे फिर आ गए मौलवी साहब, वो पानी तो गंदा है अभी। कहा क्यों पानी नहीं निकाला था? सारा कहा निकाल दिया था, दीवारें साफ नहीं की कर दी थी तो अब क्या गंदा है? कहने के वो कुत्ता तो भी अंदर ही है ना, क्योंकि मौलवी साहब ने कहा नहीं कि कुत्ता निकालो, उन्होंने निकाला नहीं। तो याद रखिए जब तक गुनाहों के कुत्ते नहीं निकलेंगे ये नमाजें, ये तहज्जुदें, ये तरावियां फायदा नहीं देंगी। اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے. چلیے سورۃ الغاشیہ کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ. کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے. وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع. ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا. جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا. وجوہ یومئذ ناعمہ. اس دن بہت سارے چہرے نعمتوں میں ہوں گے اور آسودہ حال ہوں گے. کیوں؟ لسعیہا راضیہ. اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ. بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے جہاں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے. جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور مخملی مسندیں پھیلی ہوں گی. اتنا کچھ ہے جنت میں. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے وہ کس طرح سے پیدا کیے گئے اور آسمان کو کہ کس طرح سے اس کو اونچا کیا گیا اور پہاڑوں کی طرف کس طرح کے وہ گاڑ دیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور زمین کی طرف کے کس طرح وہ بچھائی گئی. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. بس آپ نصیحت کرتے رہیں اور آپ تو صرف نصیحت ہی کرنے والے ہیں. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. آپ ان پر کچھ داروغہ نہیں. ہاں جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. اس سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا. یہ ہے رکوع نمبر 13. اس کا عنوان کیا ہے؟ حساب ہم لیں گے. دینے کے لیے تیار ہیں؟ بہت ہوش اڑانے والی باتیں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی کہ کس طرح قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم میں جلیں گے. ان کے چہروں پہ سیاہی چھائی ہوگی. کام کر کے بھی محنت کی مزدوری نہیں ملے گی. عاملۃ ناصبہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں ایک دفعہ کسی چرچ کے پاس سے گزرے. پادری کو وہاں دیکھا کہ اپنے طریقے پہ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کر رہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یہی ہے وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عاملۃ ناصبہ. ان کو ان کی محنتوں کی کمائی نہ ملے گی. حقیقت یہ ہے کہ غلط رخ پہ کی گئی کوششیں بالکل ایسے ہی ہو جاتی ہیں جیسے کہ وہ کوشش نہ کی ہو. تو پہلی عمل کی بات اس میں سے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم نے کوئی کام کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ کام درست ہے بھی کہ نہیں. دین کا ہے تو اس کا سورس اللہ اور اس کا رسول. اور اگر دنیا کا کوئی کام ہے تو اس میں بھی انسان اپنی فطرت اور عقل سے پوچھ کے رہنمائی لے لے کہ جو کام میں کر رہی ہوں وہ کیسا کر رہی ہوں. کیونکہ عموماً آپ دیکھیے کہ دین کے ہی کام ایسے ہوتے ہیں جس کو نیکی سمجھ کے ہم کرتے ہیں نا. تو اس میں بھی بعض دفعہ خیال نہیں رکھا جاتا اور صرف ایک اسمپشن کی بنیاد پہ ہم نیکیاں کرتے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا اور انہوں نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا. تو پہلی چیز اس سے یہ سمجھ میں آئی. دوسری چیز ہمیں اس رکوع سے کیا سمجھ میں آئی کہ ہر چیز دنیا میں ہی نہیں لینی اس لیے کہ آخرت میں بھی بہت کچھ تیار ہے. جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا آپ کو شاید اس طرح مزہ آ رہا ہوگا کہ نہیں جو عربی کا لطف ہے. تکیے لائنوں میں لگے ہوئے, کاؤچیز ہوں گی, پھر وہاں چشمے بہتے ہوں گے, تخت ہوں گے, ویلوٹ کی نیچے شیٹس بچھی ہوں گی. تو میرے ذہن میں ایک بڑا ہی ایک اچھا ایسے جیسے 5-star 6-star ہوٹل کا تصور آ رہا تھا کہ عموماً ایسی چیزیں انسان وہاں جاتا ہے ایک رات کے لیے ہزاروں خرچ کراتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں انجوائے کریں گے. لیکن ایک رات کے بعد جب پیسے دیتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ضرورت تھی اتنا مہنگا ہوٹل لینے کی, اب تو آنا ہی تھا. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ رکھ دے گا جو بندے کی خواہش ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا ہے उसकी फितरत बनाई है, उसको पता है मेरा बंदा क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। लिहाजा कभी भी ये मत सोचें क्या कि मेरे रब ने मुझ पे पाबंदियां लगाई हैं, सिर्फ चाहता कि हमसे उसको आगे के लिए जमा कर ले। अबू जर गफारी का नाम सुना है आपने? बड़े प्यारे सहाबी थे और जाहिद थे, यानी नाम जाहिद नहीं था उनका, जुहद वाले थे, तकवा था उनमें। एक दफा को इनके घर में आया तो देखा कि सामान नहीं है, बहुत थोड़ा जरूरत का, गुजारे का। उन्होंने पूछा कि आपका सामान किधर है, तो कहने लगे कि वो दूसरे घर भेज दिया है। वो समझे कि शायद इनके दो घर होंगे, जैसे आजकल माशाल्लाह हम में से बहुत सारों के हैं। कल मुझे किसी का सवाल पढ़ के बड़ी हंसी आ रही थी कि उन कहने लगी एक घर भी है दूसरा भी है लेकिन रहती वो रेंट पे है, तो क्या अपने उस घर की ज़कात देंगे। तो मैं हंस रही थी सोच के अपने तौर पे कि भाई देखो ऐसा भी होता है ना। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने किस घर की बात की, कहा कि यहाँ क्यों नहीं थोड़ा सा सामान रखते, कहा कि यहाँ मालिक रहने नहीं देता, तो फिर सामान जहाँ क्यों रखूँ। बाद में पता चला कि वो दूसरा घर कौन सा है, आगे का घर। इसी से एक और बात याद आ गई कि किसी ने पूछा कि मुझे मौत से बड़ा डर लगता है, मरने से बड़ा खौफ आता है, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि देखो तुम ऐसे करो कि जो तुम्हारी पसंद की चीजें हैं ना, जो चीज तुम्हें बड़ी अजीज है, उसको सदका करना शुरू कर दो, आगे भेज दो। फिर क्या होगा कि जहां इंसान की चीजें होती है ना, उसका दिल चाहता है मैं वहां पहुंच जाऊं। तो जब हमारी मनपसंद चीजें आगे जाती जाएंगी तो हम भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। मसला कहाँ बिगड़ता है जब सारी मनपसंद चीजें यहां रखी हुई है। कैसे मरें, ये चीजें मरने नहीं देती, पाँव पकड़े हुए इन चीज़ों ने, और जन्नत कौन मांगे, ये दुनिया भी जन्नत है। तो लिहाजा अल्लाह ताला से क्या कहना है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। और अल्लाह की नाराज़गी से मिली हुई चीज़ कभी हसना नहीं होती। तो लिहाजा दुनिया में कुछ को लेते हुए भी हमने अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखना है कि सुम इन अलैना हिसाबहुम, हमारे जिम्मे है इनका हिसाब लेना। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाब यसीरा। तैयार है हिसाब देने को? दे सकते हैं। मैंने देखा कि दुनिया में भी हिसाब का मजमून सबसे मुश्किल लगता है लोगों को। मेरा तो फेवरेट था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि बड़े दुखी होते हैं हिसाब से। शोहर के बीवी से हिसाब ले लेना एक हफ्ते का, उसी दिन बीवी की तबीयत नासाज हो जाती है? ऐसी बातें ना करें। मैं सोचती हूँ कि एक दिन का हिसाब हमारा बॉस, कहीं कोई जॉब करते हैं लोगों को अंदाजा होगा, डेली शीट मिलती होगी, जब शाम को पता चलता है क्या किया क्या नहीं किया, तो एक एक मिनट का हिसाब देना मुश्किल लगता है ना। उस दिन क्या होगा जिस दिन पूरी जिंदगी का हिसाब देंगे, कितना मुश्किल वो दिन होगा। आज दुनिया में आप देखिए कि कभी आपने, मुझे इसका सबसे अच्छा अंदाजा होता है जब मैं एयरपोर्ट्स पे जाती हूँ, वही सामान जो बड़ी मोहब्बतें और अरमानों से खरीदा होता है वो एयरपोर्ट पे आपको जलील और रुसवा कर देता है। कभी चॉइस तुलती है, कभी उतरती है, कभी निकलती है और डलती है। और ऐसे में आप देखते हैं एक शख्स को दूर से आया, हाथ में एक ब्रीफ केस है, और सीधा गया उस लाउंज में कि नो बैगेज, और 2 मिनट में हिसाब किया अपना और बोर्डिंग पास लेके चले गए। आपके सामने कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं, बिल्कुल यही कयामत के दिन होगा। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कमजोर कम माल वाले लोग मालदार लोगों से 500 साल पहले जन्नत में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो तो अभी हिसाब तुल वो तो अपने सोफे तुलवा रहे होंगे, वो तो अभी अपनी चीजें तुलवा रहे होंगे, उनका क्या बनेगा। सच कह रही हूं, यानी बिल्कुल दो शख्स एक ही जैसे काम करें, एक नमाज है, यानी मिसाल है कि अगर समझे कि 100 में से 80 नंबर हो दोनों के, लेकिन एक को दुनिया में दौलत मिली हो, गुना की बात नहीं कर रही, दोनों नेक हो, एक ही दर्जे की नेकियां हो, लेकिन एक की नेकियों के साथ दौलत भी है, दूसरे के साथ दौलत नहीं थी, तो फिर भी आपने फरमाया कि नंबर बराबर होने के बावजूद जिसके पास नहीं था या कम था वो उससे पहले जाएगा जन्नत में। इसीलिए तो कयामत के नामों में से यही नाम है ना कि हाफिजतुर राफिया, जो ऊंचे बने हुए हैं वो झुक जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, और नीचे जो है वो ऊंचे हो जाएंगे. तो अल्लाह ताला हमारा आसान हिसाब ले. हासिबू कबल अन तो हासिबू, हजरत उमर कहा करते थे रजी अल्लाह ताला हो कि लोगों अपना हिसाब खुद ले लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए. अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम कर दे. और हिसाब कब आसान हो जाता है? ख्वाहिशों पे पाबंदी लग जाती है. जब पढ़ा ना अपने दूसरी सूरत में, वनहन नफ्स अनिल हवा. एक और बड़ी मोटिवेशनल बात याद आ गई तो सुना देती हूँ. एक दफा किसी जंग में थे तो माल गनीमत आता है आपको मालूम है, तो वो लोगों में बट जाता है. आप नबी सल्लम ने बांट दिया. अब एक सहाबी थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, खाम खा आपके जहन में उनके बारे में कुछ आने लगे. उनके दिल में ख्याल आ गया कि अल्लाह के नबी सल्लम ने दूसरों को मेरे से ज्यादा दे दिया. हो सकता है किसी न्यू कमर को आपने ज्यादा दे दिया हो, उनको कम दिया. अब ये बात जब दिल में आती है तो मुंह पे भी आ जाती है, कहीं जिक्र कर बैठे. और जब बात आप किसी से जिक्र करते हैं तो वो यहां भी पहुंच जाती है. अल्लाह के नबी तक बात आ गई, आपको रंज हुआ, आपने अपने उस साथी को बुलाया और उनको कहा कि ऐसा करो कि एक पत्थर लेके आओ, स्या रंग का. वो गए, काले रंग का पत्थर लेके आए, ढूंढा. आपको था मक्का के पत्थर, वो लाए, उसको सारा दिन धूप में रखा. जब खूब तप गया 12-1-2 बजे, यानी खूब प्राइम टाइम था, तो आपने कहा कि अब तुम ऐसा करो कि इस पे ऊपर खड़े हो जाओ और मुझे गिनवाओ कि मैंने तुम्हें जंग में क्या क्या दिया, माले गनीमत में तुझे क्या दिया. अब अल्लाह के नबी की बात कौन ना माने. खड़े हुए, अब वो पत्थर जल रहा था. एक पांव रखते हैं तो एक उठाते हैं और कहते हैं तलवार मिली, फिर दूसरा वो जलता है तो उसको रखते हैं तीर दिए. यानी 2-3 चीजें गिनवाई और उसके बाद पत्थर की गर्मी की से बेहोश होके गिर गए. और जब होश आया तो अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, आज इस दुनिया के पत्थर की गर्मी और ये चंद चीजें तुम नहीं गिनवा सके, सोचो उस दिन क्या होगा जब क्यामत के दिन जलती हुई जमीन के ऊपर ये सारी दुनिया की चीजों का हिसाब देना पड़ेगा. अल्लाह महासिब ना हिसाब यसीरा.